धरती पर एक दिन बादल भी गरज उठे ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोले बस चुपके से घूट लिया दम। और एक दिन
माटी रूठी आज हमसे बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जन्म ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका गिर गया तू मन से।
जलती दुनिया को बुझा ले बुझ पे दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा ले पतझड़ में फूल खिला ले। बड़ी भूल हुई है हमसे ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी
दे दे माफी घायल है बढ़ते कदम। कर दे तू अब मरहम।
शांति। सूरज, बादल, पेड़, हवा, अगर रुट जाए तो क्या होगा? सूरज, बादल, पेड़, हवा, अगर रुट जाए तो क्या होगा? प्रकृति अगर रूठ जाए हमसे तो क्या होगा? जीवन समाप्त। एक छोटा बच्चा एक गार्डन में बैठा था और रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। उसको किसी ने पूछा, तुम क्यों रोते हो? वो कहता है, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे खिलाती है, मुझे पिलाती है। मेरी माँ जो है, मैं जब रूठता हूँ तो मुझे मनाती है, गीत गाती है, कभी डांस करके दिखाती है। मैं जितने भी नखरे करता हूँ सबको समा लेती है। तो राहगीर पूछता है, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी मां मिली है, पर तुम रोते क्यों हो? क्या तुम्हारी मां ठीक तो है? वो कहता है, मेरी मां बिल्कुल ठीक है, पर मैं अपने घर का पता भूल गया हूं। मैं अपने घर का पता भूल गया हूं। प्रकृति हमारी मां है, और शायद हम अपने घर का पता भूल गए। इस प्रकृति के समीप जाना, इस प्रकृति के निकट जाना, वापस अपने घर की ओर जाना है। तो आज का जो टूल है हमारा, वो है प्रकृति। प्रकृति में समय बिताना, प्रकृति के सानिध्य में जाना, प्रकृति को अनुभव करना, प्रकृति को फील करना, जितना समय हो सके प्रकृति के साथ रहना। भट्टी के अंतिम 8 दिन इन 8 दिनों में कुछ ऐसा अनुभव करना है जो शायद आज तक कभी किया नहीं, और उसके लिए चाहिए मौन, एकांत और अंतर्मुक्त, ये 3 चीज। और वो तीनों ही प्राप्त होगी प्रकृति के सानिध्य में। जितना जितना हम प्रकृति को जानने की कोशिश करेंगे, उतना हम स्वयं को जानेंगे, क्योंकि प्रकृति के समीप जाते ही हमारा अपना वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आता। एक हमने देखा था स्वाध्याय, प्रकृति में चलना, विश्वास, वैराग, सेवा, तप, राजयोग, अंतर्मुखता, संतुष्टता, आत्मिक दृष्टि, प्रतिक्रमण और समय। और आज का हमारा टूल है प्रकृति का सानिध्य। और प्रकृति के सानिध्य में 2 चीजें बाधा है, 3 चीजें। कौन सी? एक तो भोजन, दूसरा आवाज, तीसरा व्यक्ति, 7 आवाज सभी की है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब हमारे वाइब्रेशंस को लो करते, नीचे करते। इसलिए अगर प्रकृति के सानिध्य में जाओ तो नियम है, जितना हो सके अकेला, एकांत। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स बंद, और जितना हो सके यदि प्राणिक ऊर्जा का अनुभव करना है तो वो अनुभव 8 खाली होने पर ही होगा, अच्छे से होगा, क्योंकि अभी प्राणिक बचपन चालू है सबका। एक बार बड़े हो गए प्रौढ़, तो फिर तो कहीं पर भी अनुभव हो सकेगा, परंतु शुरुआती दिनों में इन सब चीजों का आधार लेना पड़ेगा, इन टूल्स का आधार लेना पड़ेगा। एकांत हो, जितना हो सके व्यक्ति कोई ना हो, मौन हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो। तो ये सारे टूल्स हैं। इन अंतिम 8 दिनों में 14 दिन पूरे हुए हैं, आज का 14, 13 दिन पूरे हुए। 13 दिनों में सभी ने अनुभव किया होगा कि जैसे ही लिक्विड डाइट पर जाते हैं एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, लाइट का अनुभव होता है और क्या क्या होता है, एनर्जेटिक फील होता है, स्टेमिना बढ़ जाता है, थकान नहीं रहती है, नींद कम हो जाती है, अमृत वेला बहुत पावरफुल होने लगता है, नींद अपने आप कम होने लगती है। सुबह बाबा ने कहा है क्या करो रात को, जाग कर योग करो, हे नींद को जीतने वाले योगी, श्वासोश्वास बाप को याद करो और नींद को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक रस इंद्रियों को नहीं जीता जाए। और एक चीज जो सभी ने अनुभव की होगी, बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो होती रहती, कई लोगों के जॉइंट पेन्स ठीक हो गए, बीपी की गोलियां, शुगर की गोलियां अपने आप कम हो गई या छूट गई, बीमारियों से मुक्ति अगर होगी भी तो उसका प्रभाव हम पर उतना नहीं होगा जितना बाकियों पर होता है, और होगा ही। और दूसरी चीज, पेन सेंसिटिविटी, दर्द बहुत कम होगा, पर इसमें थोड़ा खतरा भी है क्योंकि बड़ी बड़ी चोटें लगेगी पर दर्द नहीं होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। और एक चीज, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बहन ने अनुभव सुनाया कि अभी अभी जो अर्थक्वेक हुआ, बड़ा अर्थक्वेक जो हुआ, वो उसी देश में आसपास कहीं रहती है, ग्रीस में। वो कहती है कि वो खुद इस लिक्विड जर्नी पर है, इस प्राणिक जर्नी पर है, और जैसे ही वो खबर सुनी कि भूकंप हुआ है, उसको एकदम रोना आ गया, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटीनेस, सेंसिटिव नेचर बहुत बढ़ जाता है इसमें। इसके लिए ये प्राणिक स्टेज बहुत फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक अवस्था है, हमें अपने आप को बहुत बहुत केयरफुली प्रोटेक्ट करना होगा इमोशंस से, फीलिंग्स से, करुणा का भाव जागेगा, प्रेम का भाव जागेगा, सब कुछ होगा। और दूसरे व्यक्ति हमें प्रभावित करते हैं, दूसरों के वाइब्रेशंस, दूसरों के भाव हम कैच कर सकें, क्योंकि हमारा सिस्टम धीरे धीरे बहुत रिफाइंड रिफाइंड होते जा रहा है, शरीर बहुत सेंसिटिव, और बहुत सारे डिटॉक्स सिम्टम्स होंगे सबको, किसी को लेट होगा, किसी को जल्दी होगा, इमोशनल मेंटल फिजिकल कुछ ना कुछ तो होगा। और लोग विघ्न भी डालेंगे। आज सुबह की साकार मुरली, विष पीने वाले विघ्न डालेंगे, घबराना नहीं है। इसलिए आगे बढ़ते रहना है। 13 दिन पूरे हुए, 8 दिन बाकी है। 8 दिन तक सॉलिड फूड के आगे घुटने नहीं टेकने, ये मंत्र है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमारियां क्यों ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, और कुछ ना कुछ तो होगा। तो आज के प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कहो या अनुभव कहो या जो भी आत्माएं, हर व्यक्ति अलग है, हर एक के अनुभव अलग होंगे, हर शरीर अलग है, हर एक के हिसाब किताब अलग है, सबके एक जैसे नहीं होंगे, किसी को सब कुछ होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा। हर एक का खान पान अलग है, हर एक का शरीर अलग है, हर एक की फूड हिस्ट्री अलग है, किसी ने सब कुछ खाया है अपने जीवन में, नॉन वेज से लेके तो दारू बीड़ी सिगरेट सब कुछ, और किसी ने बचपन से कुछ भी नहीं लिया, किसी का जन्म ही यज्ञ में हुआ है, ऐसे वैरायटी लोग हैं, तो वैरायटी लोगों की वैरायटी अनुभव हम रोज देखते हैं ओपीडी में। एक ही बीमारी पर हर एक को अलग अलग हो रहा है। कल जो हमारी ओपीडी थी 100 के ऊपर की ओपीडी थी, इतनी भयंकर, कितने सारे एडमिशंस हो गए। हम कई बार साक्षी होकर देखते हैं ये सारे लोग जो सफर कर रहे हैं, 90% सबका कारण भोजन है, गलत आहार या उससे भी ज्यादा। किसी को, हर एक को कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो ये यात्रा जो है एक पश्चाताप की, दूसरा पांच बातें, दूसरा पहला पश्चाताप, दूसरा संस्कारों के साथ परिचय, तीसरा, ये तीसरा है वैसे, डिटॉक्स या हीलिंग की यात्रा है। शरीर में जो दबा हुआ है वो बाहर निकलेगा। तीसरा, चौथा, असंभव संभव की, और पांचवा, साहस। पश्चाताप की भी यात्रा है, साहस की भी यात्रा है, डिटॉक्स की भी यात्रा है, अपने संस्कारों को समझने की यात्रा है, दूसरों के भी संस्कारों को समझने की यात्रा है। जिनके साथ हम रहते हैं उनके संस्कार हमको समझ में आएंगे। जो हमारे रिलेशनशिप्स है उसमें क्या हो रहा है वो समझ में आएंगे। और लास्ट, असंभव जो है वो संभव होगा, ये सब होगा। और नई नई चीजें निकलेगी बाहर जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। तो आज के प्रश्न उत्तर या अनुभव देखते हैं।
ओम शांति। बहुत अच्छा चल रहा है, वजन भी बिल्कुल राइट है। मैं सविता, रोहा महाराष्ट्र से, उम्र 60 साल, वजन 57। कल थोड़ा सिर में दर्द था, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब अच्छा चल रहा है। अभी अमृत वेला भी, सुबह जल्दी आंखें खुलती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।
तीन क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। एक, वेट धीरे धीरे स्टेबल होते जाएगा, जिनका पहले कम था वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये तीनों चीजें हो जाए तो बहुत अच्छा है। वजन स्टेबल हो जाना, एनर्जी लेवल बढ़ जाना, नींद धीरे धीरे कम हो जाना, और सबसे महत्वपूर्ण खुशी की अनुभूति, आनंद, जॉय। तो सभी देखेंगे कि धीरे धीरे सारे क्राइटेरिया आ रहे हैं। आनंद की अनुभूति हो रही है, नींद अपने आप कम हो रही है, अलार्म की भी आवश्यकता नहीं, अपने आप नींद खुलती है, और थोड़ी सी नींद में भी बहुत ज्यादा अनुभव होता है रेस्ट का। उसको कहते हैं प्राणिक नैप्स, नैप अर्थात छोटी नींद, जबकि थोड़ा सा भी सो जाओ तो नींद पूरी हो जाती है, प्राणिक नैप्स। ऊर्जा बढ़ेगी, नींद कम होगी, और वजन धीरे धीरे, पहले हो सकता है कईयों का कुछ समय अप डाउन होगा, फिर धीरे धीरे स्टेबल होते जाएगा, क्योंकि शरीर भी समझते जाएगा फिर। तो यहां पर भी सारे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे और हो रहे कईयों। नेक्स्ट।
सब चीज ठीक से चल रहा है, लेकिन एक प्रश्न है कि मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो उसको ठीक कैसे करूं?
इंग्लिश एक काम करो, लिक्विड डाइट के बारे में जो कुछ लिखा है मटेरियल, वो इंग्लिश में पढ़ना चालू करो। इसके लिए एक विधि तो पहले भी बताई थी जो हिंदी के लिए बताई थी, वो अब इंग्लिश के लिए यूज करो। तो रोज कम से कम 10 नए इंग्लिश शब्द निकालो। जो हमने हिंदी के लिए कहा था, अगर इंग्लिश कोई भी भाषा, उस भाषा से अपने आप को सराउंड कर दो। इसके पहले भी सुनाया था, लोग विदेश जाते हैं परंतु फिर भी वहां की भाषा सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहां हिंदी स्पीकिंग लोगों को ढूंढ लेते, गुजराती गुजरातियों को ढूंढ लेते, पंजाबी पंजाबियों को ढूंढ लेते, तमिल तमिल को ढूंढ लेते, इसलिए वो इंग्लिश वो भाषा सीख ही नहीं पाते। इसलिए कोई भी भाषा अगर सीखनी है तो रूल नंबर 1, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश मर्डर इट फर्स्ट, उसका खून करना पड़ेगा। बोलना चालू करो, यू स्पीक इट बाय स्पीकिंग, पहला। दूसरा, रोज की जो मुरली है वो इंग्लिश में पढ़ना चालू करो। हिंदी में मुरली पढ़ना बंद, इंग्लिश में मुरली पढ़ना चालू करो। और इंग्लिश के जो शब्द आते हैं डिक्शनरी निकालो, हिंद खोज आती है एक ऐप है, हिंद खोज, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश का जो भी शब्द आता है उसको इनिशिएशन, इनिशिएशन का अर्थ ढूंढो क्या है, आरंभ, दीक्षा, शुरू करना, चालू करना, श्री गणेश करना, हिंदी शब्द, इंग्लिश शब्द, उसका हिंदी। तो रोज डिक्शनरी खोल के बैठो या ऐप है, और एक डायरी बनाओ जिसमें इंग्लिश शब्द और उसका हिंदी शब्द, ऐसे 10, फिर धीरे धीरे 20 हर दिन, और हर दिन उसको रिवाइज करना। एक, दूसरा किताबें पढ़ना, तीसरा इंग्लिश मुरली सुनो ईयरफोन, इंग्लिश मुरली सुनो, प्रोनाउंसिएशन को सुनो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अगला इंग्लिश क्लासेस सुनो, और सबसे बड़ी बात ये पूरा पौराणिक लिटरेचर जो 108 दिन की यहां पर क्रांति चली, ये कहीं पर भी किसी भी किताब में हिंदी में लिखा हुआ नहीं है। ये सारा प्राणिक लिविंग का ज्ञान इंग्लिश भाषा में लॉक्ड है। अगर इसे जानना है और समझना है तो इंग्लिश को जानना ही होगा। और ये कहा जाता है इंग्लिश एंड कंप्यूटर और डाई, यदि तुम्हें ये दो बात चीजें नहीं आती है बेटर डाई, क्योंकि वर्तमान समय ये दो चीजें जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप फ्रेंच नहीं जानो तो चलेगा, लैटिन नहीं जानो तो चलेगा, मराठी नहीं आई तो चलेगा, तमिल नहीं आया तो चलेगा, तेलुगु नहीं आया तो चलेगा, स्पेनिश नहीं आया तो चलेगा चलेगा, रशियन नहीं आया तो चलेगा, परंतु इंग्लिश भाषा ऐसी है आप पूरे विश्व में कहीं पर भी चले जाओ वो भाषा आपको मदद करेगी। और एक बात, नई भाषा जानने का फायदा एक है, आप उस नई भाषा के आधार से उस लिटरेचर में प्रवेश कर सकते हो। जैसे गुजराती, मुझे गुजराती नहीं आती है तो गुजराती में कितना महान लिटरेचर जो है, जो साहित्य है, मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं गुजराती जान लूं तो गुजराती साहित्य को जान सकता हूं। मराठी इतना रिच लिटरेचर है, अगर मुझे मराठी नहीं आती तो मैं मराठी लिटरेचर को नहीं जान सकूंगा। इसलिए कई लोग मल्टी लिंग्विस्टिक होते, कई भाषाओं को सीखते हैं, उनकी हॉबी होती है, जिस देश में जाते हैं 6 मास में वहां की भाषा सीख लेते। तो यहां पर भी अगर इंग्लिश को जानना है, इंग्लिश तो ऐसी भाषा है कि यूनिवर्सल है, इसलिए रोज लक्ष्य रखो कि 10 इंग्लिश के नए शब्द जानने हैं। और वो शब्द कहाँ मिलेंगे, कहीं स्लोगन लिखा रहता है वहां से शब्द पढ़ लो। रोज की मुरली, कोई स्लोगन, कोई क्लास, कहीं पर भी जो भी इंग्लिश शब्द आता है उसकी मीनिंग ढूंढो और लिखो, या फिर इसी क्लास में कितने सारे इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया गया है, या फिर रोज की मुरली में, आज की मुरली में ही वंडर खाते हैं, वंडर, वंडर शब्द का अर्थ ढूंढो, क्या क्या अर्थ हो सकता है, सरप्राइज और वंडर में क्या अर्थ है, क्या डिफरेंस है। तो रोज नए नए इंग्लिश शब्द ढूंढो, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाओ, ग्रामर को छोड़ दो, व्याकरण जो है वो सबसे लास्ट, व्याकरण को टच ही नहीं करना है। हमारा जन्म किस परिवार में हुआ, हिंदी परिवार में हुआ, फिर हमने हिंदी व्याकरण कब सीखा, बचपन में नहीं, स्कूल में जाने के बाद, तब तक तो हम हिंदी पहले से बोलते थे, तो व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, व्याकरण लास्ट है, व्याकरण को छोड़ दो। क्योंकि व्याकरण से शुरू करोगे तो फिर माथा गर्म हो जाएगा। व्याकरण तो हिंदी अच्छी अच्छी बोलने वालों को भी नहीं आती। व्याकरण को छोड़ दो, कम से कम हिंदी उस हद तक तो हम बोल सके, शिव बाबा आती है, ब्रह्मा जाती है, ये तो ना बोले, मम्मा आता है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो कम से कम सीख ले। दादी किधर गया? ब्रह्मा नहीं, शिव बाबा नहीं बोलती, ब्रह्मा बोलती है। कम से कम ये तो ठीक कर ले। तो
ओम शांति भाई जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 100 एपिसोड। सोचे कि आपने दिन रात मेहनत करके 100 शतक मारे, तो हम भी इस भर्ती का एक्सपीरियंस का सभी संगठन में जुड़े भाई बहनों से शेयर करें कि इस भर्ती से हमें क्या क्या लाभ हुआ है। तो ये शेयर करके हम भी सोच रहे चक्का चौका लगा ले, क्योंकि जैसे जैसे ये भर्ती खत्म होने को है उतना उतना माया भी हावी हो रहा है। जैसे कि संडे को ब्रह्मा भोजन का सुगंध हिला रहा था, लेकिन सोचे ले ले, लेकिन नहीं सोचे ले ले नहीं, लेकिन बहुत हिला रहा था अपना मतलब। लेकिन उसमें हम कहीं भी जाते हैं घर से बाहर तो अपना एक किट तैयार रखते हैं, उसमें नारियल पानी, चाकू, पाइप, चिया सीड्स, शहद, पानी वगैरह लेके चलते हैं। तो फिर फटाफट गाड़ी में गए और एकदम सब पी के अपना मन को इस भट्टी को सब तृप्त कर दिए, मतलब अपने मन को पेट भर लिए। और इस यात्रा में हमने गौर किया भाई जी कि लिक्विड डाइट से थोड़े समय के लिए क्रेविंग आती थी, और सॉलिड फूड जब लेते थे पहले तो लंबे समय तक वो भूख का असर रहता था, और ये एकदम आता है चला जाता है। ये एक मुझे यात्रा में एक नया अनुभव हुआ। और दूसरी कि पेशाब में कोई भी दुर्गंध नहीं आती है, एकदम स्वच्छ लगता है, कोई भी तरह का स्मेल नहीं आता। और सेवा में भी बहुत दूर तक सोचते थक जाएंगे, लेकिन नहीं, और एनर्जी आते रहती, थकते नहीं है जल्दी, 2-3 किलोमीटर तक चलते गए चलते गए, लेकिन थकान भी नहीं महसूस हुआ। तो एक ये हुआ। फिर अभी तो बिल्कुल थिन लिक्विड पे चले गए, 3-4 दिन पहले तो पेट क्लियर नहीं हो रहा था, थिन लिक्विड लेने की वजह से चाय बार बार लेते थी लेकिन तब भी स्टूल पास नहीं हुआ। और सुबह के क्लास के बाद आज रनिंग की 20 मिनट तक रनिंग, 20 मिनट तक सन गेजिंग करती रही, और चाय का बिना ही मोशन आ गया। तो मुझे लगा कि बचपन से बेटी का आदत है कि फ्रेश होने का, लेकिन आज नया नेचुरल तरीका मिल गया, सन गेजिंग से भी वेट टिक का काम करता है। तो इसके लिए मैं सोच ही रही थी कि चाय छोड़ दूं, लेकिन आज बाबा ने बता दिया कि सन गेजिंग करते रहो तो चाय भी छूट जाएगी, और फिर शरीर भी नॉर्मल है, नहीं तो पहले एकदम कपकपी लगी रहती थी भट्टी के, आज दिन तक एक शरीर नॉर्मल हो गया। जैसे सॉलिड लेके फिजिकल वर्क करना, एक्टिविटी, ये सब जो पॉसिबल होते थे वो अभी भी लिक्विड पे भी एज यूजुअल सारे वर्क में कर रही हूँ। कोई तरह का डिटॉक्स सिम्टम्स ये सब कुछ मतलब अभी उतना नहीं है अभी के फिलहाल। और फिर उसके बाद अभी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल लाइट फील हो रहा है, योग में भी आराम से बैठे रहती हूँ। और अब है कि अब ये रूल्स को आपके रूल्स के स्ट्रिक्टली फॉलो करके आज से प्राणिक रूहानी आर्मी बनना है तो रूल्स को फॉलो करना है। और अब और एकदम रिफाइंड करके लिक्विड्स को लेके और ये यात्रा को धीरे धीरे संपन्न बना के ही रहने का संकल्प है। बाकी थैंक यू भाई जी, और जितने भी भाई बहन हैं संगठन में उनको भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप लोग के बिना ये यात्रा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब सब कुछ बाबा और आप लोग की वजह से सब कुछ अच्छा चल रहा है।
एक चीज होगी इस लिक्विड डाइट में, एक तो क्रेविंग धीरे धीरे कम होती जाएगी, 1, 2, यूरिन और स्टूल, इसमें जो दुर्गंध होती है वो धीरे धीरे चली जाएगी। अगला, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जो बहुत सारे एडिक्शन है हमारे, हमारा अपने एडिक्शंस के साथ परिचय होगा। केवल भोजन से संबंधित नहीं, दूसरे भी, किसी व्यक्ति से हम अटैच्ड है, कोई हमारा एक पर्टिकुलर संस्कार है, क्योंकि शरीर जिसने स्वच्छ कर लिया उसको बाहर की गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो धीरे धीरे पूरी तरह से स्वच्छ होते जाएगा, धीरे 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 धीरे, कमरा, वॉशरूम, किचन, सब कुछ, मोबाइल। डिजिटल डिटॉक्स भी होते जाएगा धीरे धीरे। तो ये बहुत सारी चीजें अपने आप होगी, केवल इस यात्रा को धीरे धीरे चालू रखना है। और एक प्रश्न पूछा गया है कि कैलोरीज को कब कम करना चालू करें। कई लोगों ने पूछा है कि अभी बहुत स्टेबल चल रहा है, 1500 कैलोरीज ले रहे, 6 बार लिक्विड्स ले रहे, 7 बार लिक्विड्स ले रहे, पर अभी ऐसी इच्छा हो रही है कि कम किया जाए। तो उसका एक क्राइटेरिया है, वो ये, अगर वेट स्टेबल हो गया है या वेट बढ़ गया है थोड़ा पहले से, तो फिर सेफली थोड़ी कैलोरी कम की जा सकती, उससे पहले नहीं। जिनका पहले ही वेट कम है और अभी और कम हो रहा है, उनको तो कैलोरी बढ़ानी है, पर जिनका पिछले 10-15 दिनों से वेट बढ़ते जा रहा है, 2-3 किलो बढ़ गया है, वो आराम से कैलोरीज को कम कर सकते। 1000 कैलोरीज तक आ जाओ धीरे धीरे, फिर 900 तक करके देखो, 800 तक करके देखो, क्या होता है देखो, वही सेम एनर्जी लेवल रहेगा, स्लीप और कम होती जाएगी, अमृत वेला और पावरफुल होती जाएगा, और शरीर से एकदम डिटैचमेंट रहेगा, निरंतर अशरीरीपन का अनुभव। नेक्स्ट।
ओम शांति। वजन 42 किलो, उम्र 34 वर्ष, हाइट 5.1 इंच, और काफ़ी समय से वजन बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोटीन लिए, बहुत सारा खाना खाया, लेकिन वजन नहीं बढ़ा। अब इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि शायद अब वजन बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अब प्राणिक यात्रा अपनी लाइफ स्टाइल ही ऐसी बनानी है, और कैलोरी लगभग 17 से लेता हूँ। आप भाई जी इसके बारे में क्या कह सकते हैं, वो मुझे बताइए वजन कैसे बढ़े।
खाने पीने का तो सब किया, एक्सरसाइज करो, जिम, थोड़ा सा वर्कआउट चाहिए, और ज्यादा फोर्स नहीं करना है, सब कुछ कर लिया ना, तो वजन बढ़ाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। ऊर्जा लेवल अगर बहुत अच्छा है तो छोड़ दो, फिर अपने आप बढ़ेगा वो। और 1700 कैलोरीज है, 2000 तक करके देखो, लेट्स सी।
ओम शांति। डिवाइन सचिन भाई जी, मैं तमिलनाडु से सरोजा बहन बोल रही हूँ। लिक्विड फूड खाने के बाद, सॉरी, लिक्विड फूड पीने के बाद एनर्जी लेवल अच्छा लग रहे, आत्मस्थिति इनिशिएशन स्टेज भी अनुभव हो रहे, लेकिन पहले मैं योग करने के समय एकाग्रता शक्ति था, कॉन्सेंट्रेशन पावर था, लेकिन अभी एनर्जी लेवल बढ़ रहे, इनिशिएशन आत्मस्थिति स्टेज अनुभव हो रहे, लेकिन एकाग्रता शक्ति योग का समय अनुभव नहीं हो रहे, अंदर से ज्यादा वेस्ट थॉट्स आ रहे, इसका सोल्यूशन आप बताना भाई जी।
वेस्ट थॉट्स तो आएंगे, जो अंदर है वही बाहर निकलता है। अध्यात्म में उदाहरण दिया जाता है कुएं का, कुएं में बकेट डाली रस्सी से तो पानी आ रहा है, मतलब पानी था, अगर कुएं में पानी नहीं है तो पानी आएगा ही नहीं। अगर कुछ भी निकल रहा है वेस्ट थॉट्स, अर्थात वो सब कुछ अंदर जमा था, पता तो चला है, अब उसको कैसे निकालना, वो हर एक को अपनी मेथड खुद ढूंढनी पड़ेगी। पहले उसको निकलने दो, वो जो व्यर्थ है उसका स्वरूप जानो, उसका उद्गम स्थान क्या है, वो व्यर्थ निकल कहां से रहा है, और हर एक व्यर्थ कहीं ना कहीं विकार से निकलता है, जरूर बहुत डीप इनसाइड कोई ना कोई इम्प्यूरिटी है, कोई ना कोई घृणा है, कोई ना कोई नफरत है, किसी ना किसी के प्रति कुछ तो है, कुछ तो गलत धारणाएं हैं भीतर, कुछ गलत मान्यताएं हैं, कुछ है, कोई दुख है अंदर। संसार में देखो, कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़ता है, या कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रेम में पड़ती है, कैसा चेहरा खिल जाता है उनका, कैसी खुशी उनको आ जाती है, यहां सब भगवान के प्रेम में पड़े, और कहाँ खुशी क्यों नहीं है? उदासी क्यों है? वहां एक दूसरे से प्यार करते हैं तो पूरा चेहरा ही बदल जाता है सबका। भूख भूल जाती है, प्यास भूल जाती है, नींद फिट जाती है, रात रात भर बात करते हैं। यहां भगवान से प्यार हो गया है और चेहरे पर कोई खुशी नहीं, क्यों? तो ये सब जो भीतर है वो सब बाहर निकलेगा। तो कुएं में कुछ तो है, इसलिए तो कुछ तो गलत धारणा है। इंग्लिश में शब्द है, हिंदी में गधा, गधा अर्थात गलत धारणा। कोई ना कोई तो धारणा है जो गलत है, जो हमने पकड़ के रखी है। हम आए किस लिए थे? स्वतंत्र होने के लिए, निर्ग्रंथ होने के लिए, सब बंधनों से मुक्त होने के लिए। परंतु इस यज्ञ में आके नई धारणाओं में, नई नई बिलीफ सिस्टम्स में बंध गए। क्या स्वतंत्रता है? क्या यहां वही सब कुछ हो रहा है जहां पर सास बहू ननद, सास भाई भतीजा, उन सब के बीच होता है? हम आए किस लिए थे? आध्यात्मिक जीवन अपनाया किस लिए था? कि सब संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। क्या हम लोकेशना में भटक तो नहीं गए? क्या हमारी सेवा लोकेशना तो नहीं रह गई? योगी अर्थात चुप, मौन, एकांत, कहीं प्रदर्शन नहीं करना चाहता, कहीं दिखावा नहीं करना चाहता। क्या हमारी सेवाएं कहीं ना कहीं लोकेशना तो नहीं हो गई? लोकेशना अर्थात लोकेशना, लोकेशना क्या होती है? जैसे ही किसी का नाम होने लगता है, कीर्ति बढ़ने लगती है, लोग जानने लगते हैं, यश आने लगता है, तो एकदम अंदर से अहंकार आने लगता है और इच्छा होती है और प्रसिद्ध हो जाओ, और प्रसिद्ध होने की कामना अर्थात लोकेशना। एक इच्छा होती है कि अनजान ही रहो, और एक है सब मुझे जाने, वो है लोकेशना। या हमारी सेवाएं कहीं लोकेशना तो नहीं हो गई? दिखावा, आडंबर, ढोंग, प्रचार, फोटो, दीक्षा, समर्पण, ये सब क्या है? एक तरफ हम कह रहे हैं संसार हमारे लिए व्यर्थ है, और दूसरी तरफ हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो संसार को प्रभावित कर रहा है, या संसार का आकर्षण हमारी तरफ हो जाए। आसक्ति नहीं होनी चाहिए पर बढ़ रही है। भगवान क्या क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कई धर्म ऐसे हैं कि जहां पर विदेश जाने की अनुमति नहीं, बड़े प्रोग्राम्स करने की अनुमति नहीं होती। कहते हैं कि अगर तुम ये सब कर रहे हो अर्थात तुम में लोकेशन है, योगी अर्थात साधु अर्थात एकांत में रहे, यहां तो मिलने वालों का तांता लगा हुआ है, बाह्य मुख्यता है, जहां तपस्वियों का जीवन कितना एकांत और कितना मौन, कितना निराहारी हो जाता है, वो सब चीजों से छूटता जाता है, उसे ना भोजन चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए। हमारा जीवन कहीं समाज पर निर्भर तो नहीं हो रहा है? इतना निर्भर कि समाज डिसाइड करता है कि मैं खुश रहूं या दुखी रहूं। अगर समाज मुझे सम्मान नहीं देता तो मैं दुखी होता, चाहे ब्राह्मण समाज या लौकिक समाज कोई भी। क्या हुआ यहां पर? इस परिवार के अंदर एक नया परिवार तो नहीं खड़ा कर दिया आपने? अलौकिक में लौकिक तो नहीं खड़ा कर दिया, जिसमें एक ननद है, एक सास है, एक बहू है, एक सास, एक सासू जी है, एक पोता है, एक पोती है, एक बेटा है, एक बेटी है, एक पति है, एक पत्नी है, एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, एक पड़ोसी है, सब इसके अंदर है। एक बॉस है, एक जेठानी, देवरानी, एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉय, एक बॉस है, एक सीनियर, एक जूनियर, एक रैगिंग हो रही है, स्पिरिचुअल रैगिंग। ये सब तो नहीं खड़ा हो गया? अगर ये हुआ है तो ये सब इस लिक्विड डाइट में सब बाहर निकलेगा। हमारा अपने आप से परिचय होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये मेरा परिचय है, मेरे से कितने भयभीत है लोग। टेरर रैगर, हम MBBS में थे तो ऐसी भयंकर रैगिंग होती थी, कांपते थे सब लोग नीचे देखने। ये तीसरी जो बटन होती थी ना शर्ट की, वहां देखना पड़ता था, नीचे देखते हुए जाओ और नीचे देखते हुए आओ। कहीं यहाँ ही ऐसा ही मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज तो नहीं बन गया? इसलिए थोड़ा सा साक्षी होकर जो कुछ चल रहा है उसको देखना है, और जब तक सॉलिड फूड जा रहा है अंदर ये दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट।
ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि दिन भर में रो लिक्विड लेना भी जरूरी है क्या? क्योंकि हमने आज सुबह डेट सिरप और काजू का स्मूदी बना के पी, उसके बाद खोपरा और गुड़ की स्मूदी बना के पी, लेकिन रसाहार नहीं किया, यानी कि रॉ लिक्विड नहीं लिया, तो दिन भर मुंह सूख रहा था एकदम, और थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ था, तो क्या रसाहार लेना जरूरी है क्या दिन भर में रिहाइड्रेशन करने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करें?
लिक्विड्स बढ़ाते जाओ। कई लोगों का ऐसा प्रश्न है कि मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, ये सब होगा, बस अपनी यात्रा जारी रखो। डिटॉक्स सिम्टम्स हैं, आएंगे और अपने आप चले जाएंगे, कुछ करना नहीं है। इचिंग हो रही है, स्किन ड्राई हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। लिक्विड इंटेक अच्छा रखो, हाइड्रेशन अच्छा रखो, बस। नारियल पानी पीते रहो 2-3 बार, उसमें नारियल पानी में हनी डाल सकते हो, या और बहुत सारी चीजें, नीरी होता है एक, नीरी का प्रयोग कर सकते हो, नोनी होता है एक, नोनी का प्रयोग कर सकते हो, वीट ग्रास जूस होता है, वीट ग्रास जूस, ग्रीन जूस ले सकते हैं, ये बहुत पावरफुल चीज है। और कई लोग पूछते हैं ग्रीन जूस कितना ले, रोज ले क्या? रोज लेने की जरूरत नहीं, हफ्ते में 2 या 3 बार भी लिए तो बहुत है ग्रीन जूस, क्योंकि इतने दिनों में ऑलरेडी डिटॉक्स हो चुका है। नेक्स्ट।
ओम शांति भाई जी, यू आर द रियल एंजल ऑफ शिवा। आई वॉन्ट टू फॉलो द डाइट प्लान सेम एज यू पीपल फॉलो, प्लीज व्हेनेवर द बत्ती इज क्लोज्ड टेल मी द डाइट प्लान दैट यू आर फॉलोइंग।
ओम शांति, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कल अपने 4 संस्कार आइडेंटिफाई किए। एक सिचुएशन आ गई थी तो उसमें जिस तरह से मैंने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया, उसमें मुझे मेरे 4 संस्कार पैटर्न्स डिस्कवर हुए, और उस पर मैंने बहुत चिंतन किया, 1-2 घंटा चिंतन किया, 6-8 पन्ने लिख डाले उसके ऊपर कि, और सिर्फ मेरा ही नहीं, घर में भी जो वो सिचुएशन आई तो सबने कैसे रिएक्ट किया, और सबके क्या क्या पैटर्न्स थे, क्या उनके रिस्पॉन्सेस रहते हैं, वो भी नोट डाउन किए। तो जो मेरे ऊपर मुझे काम करना था वो संस्कार के लिए मैंने अपने काउंटर संस्कार बना दिए, यानी अभी नेक्स्ट टाइम अगर वो सिचुएशन आएगी तो मैं उस तरह से रिस्पॉन्ड डेफिनेटली नहीं करूँगी। और ये इतना क्लियरली आइडेंटिफाई हुआ, इतना पकड़ में आ रही है चीजें, ऐसे 1 सेकंड में पकड़ में आ रही है सब अपने बारे में सारी चीजें, और जितना क्लियरली खुद का दिख रहा है उतना ही क्लियरली दूसरों का भी दिख रहा है।
संस्कार आइडेंटिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने संस्कार पकड़ में आएंगे। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं किस तरह बिहेव करता हूं, अचानक बॉस ने बुलाया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट, व्हाट इज योर रिएक्शन? अलग अलग पैटर्न्स समझ में आएंगे स्वयं के विषय, और सबसे ज्यादा व्यक्ति सचेत तब होता है जब उसका विरोध होता है, क्रिटिसाइज होता है, स्तुति होती है तो बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे थोड़ा सा भी कोई विरोध करता है एकदम अहंकार जागता है। तो हमारा अपने संस्कारों के साथ परिचय होगा इस यात्रा में। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा किया, चार संस्कार आइडेंटिफाई किए, उसके ऊपर चिंतन किया और साथ ही साथ काउंटर संस्कार बनाए और लिखा भी। कितनी अच्छी बात है, इसलिए डायरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना उस पर आज ऐसा हुआ तो मैंने ये किया। मुझे याद है एक पेशेंट आया ओपीडी में, इतना गुस्से में था, पूरा पर्ची फाड़ के सीधा मुंह पे फेंक दिया, नहीं चाहिए तुम्हारी दवाई, जाओ। हम शांत बैठे थे तो, पर हमें पता था ये कौन पेशेंट है। ये जो पेशेंट था ये डायलिसिस का पेशेंट था, लोकल थे, अभी तो शरीर छोड़ दिया। उनके घर में उनकी युगल है और एक ही बेटा है जो अपाहिज है, पैसे नहीं है। पहले दुकान थी इधर मार्केट में, फिर बेच डाली, अब हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चलता है, पैसे नहीं है, कैसे कैसे घर चला रहे हो, और बेटा इतना मोटा है, बस वो बैठे रहता है और मंद बुद्धि है, घर की परिस्थिति इतनी खराब है। तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता है कभी कभी, और वो फ्रस्ट्रेशन वो हम पर नहीं निकाल रहा था, वो एक उसको कोई तो चाहिए था। वो गुस्सा करके गया, इतना जोर से गुस्सा करके गया, मुझे एक तरफ लगा भी उसको बोलू कि आना है तो आओ, नहीं तो नहीं आओ, अब मत आना इधर, पर हमने कुछ नहीं बोला। हम चुप रह गए। फिर वो शाम को वापस आ गया। तो ऐसा बहुत सा होगा, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, आपके लिए नहीं है वो, उनके घर के वालों के लिए, किसी परिस्थितियों के लिए है, कुछ ना कुछ हो रहा है। हमारे ओपड़ी में लोग आते, पति पत्नी वही झगड़ना चालू करते। इतना झगड़ते हैं छोड़ाना पड़ता है उनको। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने अभी तो आई थी एक बेटी अपने पिताजी को लेके, अभी अभी बीपी डायग्नोस्ड हुआ है। तो वो पिताजी बिल्कुल वही झगड़ा हो गया दोनों का, बोलते इसी के वजह से मेरा बीपी बढ़ता है। वो कहता है मैं क्या करूं, मेरे एक ही पिताजी है, मेरे एक ही पापा है, और ये टीवी देखते हुए समोसा खाते हैं, नमकीन चाहिए इनको, सब चाहिए, मैं कैसे सहन करूं। बोलते मुझे इन लोगों ने पागल कर रखा है, कुछ खाने नहीं देते। वही झगड़ा चालू हो गया, मतलब प्यार वाला बट बहुत भयंकर वाला। बोले देखना अभी मेरा बीपी चेक करोगे ना, ज्यादा ही आ गया, तो ज्यादा ही आया इसकी वजह से। तो इतना गुस्सा है अंदर, वैसा हमारे अंदर भी भरा है, पर केवल क्या है, हम लोग शांत स्वरूप है, हमारे अंदर सब दबा ज्वालामुखी है भीतर। हम ऐसा दिखा नहीं सकते जैसे बाहर वाले दिखा देते हैं, कितना सिंसियरली दिखाते, हम लोग छिपाते और फिर एकदम निकलता है, ब्लास्ट होता है, फिर सुनामी आता है, निकालो वो पिलो। बॉक्स जिम में ना वो एक होता है पंच, तो हम लोग जब जिम में जाते हैं ना सोचते हैं ये सॉलिड फूड है, मारो।
ओम शांति भाई जी, मैंने पीछे 23 जून 2022 से शुरू करके दिसंबर तक एनडीएस शुरू किया था भाई जी रॉड ऑइल पे, और लेकिन एक साल से मेरे को यूटीआई किडनी का प्रॉब्लम 13 साल से है, और उसके यूटीआई की वजह से बीपी हाई होने की वजह से एक साल में 3 बार मेरे को ब्लीडिंग हो गया नाक से। तो इस एनडीएस करने के बावजूद भी हो गया था, तो मैं बीपी की क्योंकि दवाई नहीं ले रहे थे इस मिस्टेक की वजह से, तो फिर उसके बाद ये छूट गया खाना, तो फिर से उस दूसरे खाने पे आ गए। तो प्लीज़ मुझे गाइड करें कि किडनी की वजह से कई चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन होती है बहुत ज़्यादा डाइट में, तो इसीलिए मैं इसको करना चाहती हूँ। हालांकि मैंने जूस डाइट भी पहले भी 2018 से कई बार कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। मेरी एज 58 है, ज्ञान में मैं 11 साल से हूँ, नोएडा से हूँ, दिल्ली से मैं पहले दिल्ली में थी, तो और मेरी हाइट 5'4" है, मेरा वेट 40 kg बहुत कम है, और काफ़ी सालों से 2009 से जब से किडनी का प्रॉब्लम है तब से वेट कम ही है, अंडर वेट है, ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन उससे पहले 68 kg स्टेबल होता था वेट। तो भाई जी प्लीज़ गाइड करें, मेरा क्वेश्चन आज भी चुनाया तो गया था, पर आप प्लीज़ मेरे को बताएं, बताया नहीं कुछ।
सबसे पहले जिनको भी बीपी है और जो चाहते हैं कि बीपी की गोली हट जाए, बीपी का मुख्य कारण है नमक। नमक को हटा दो, अपने आप बीपी नॉर्मल आ जाएगा, या कम कर दो, कम कर दो। वो जो भी जितने भी नमक है, सेंधा नमक, हिमालयन पिंक, सब भाई भाई है। कोई बड़ा भाई नींबू की जगह, नमक की जगह नींबू यूज करो। और हमारी जबान ऐसी है, उसको जो आदत डालोगे वो आदत उसको लगेगी। हमने खुद ही कितने 6 साल तक नमक को टच ही नहीं किया, वो अभी अभी चालू किया है, ये नई यात्रा चालू की है उसमें, एक्सपेरिमेंट के तौर पर, नहीं तो जरूरत ही नहीं थी। और हमारा सोडियम लेवल हमेशा नॉर्मल आता था, या ज्यादा हायर साइड ही आता था। नमक ला लेने के बावजूद भी जितने फल सब्जियां है सब में नमक होता है, किसी की आवश्यकता नहीं। तो बीपी के लिए वो करो। दूसरा, ये जो भी रॉ डाइट पर जाते हैं, सबसे पहला काम करते हैं अपनी सारी दवाइयां बंद कर देते हैं, ये सबसे लॉन्ग रॉन्ग स्टेप है। दवाइयां तुरंत बंद नहीं करनी है, दवाइयों की आदत पड़ गई है शरीर को, इसलिए धीरे 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 विद गाइडेंस ही कम करना है। रही बात नोज ब्लीडिंग, हमारा बीपी जब बढ़ता है तो प्रकृति का ये नियम है कि बीपी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा, तो पहले नाक से खून आएगा। ये प्रोटेक्शन है, ये हमको चेतावनी दे रहा है कि बीपी कंट्रोल करो। इफ यू डोंट ब्रीड थ्रू ब्रेन, यू विल ब्लीड थ्रू नोज। पहले नाक से खून आएगा, अगर फिर भी हम सावधान नहीं हुए तो फिर वहां की ब्रेन हिमरेज हो जाएगा। कल ही पांडव भवन के 2 सेवाधारी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कल की तारीख में, अभी सेवा में आए, परसों सेवा में आए, कल एडमिट हो गए, दोनों का बीपी 200 के ऊपर। कभी चेक किया? नहीं, जरूरत ही नहीं। बाबा बाबा बाबा, इसलिए हम सब लोग अभी, कल हमने कहा ना, कल 100 से भी ऊपर पेशेंट थे, उसमें से 50 से भी ज्यादा पेशेंट ये सर्दी खांसी वाले थे। और इधर गले को पकड़ ही लिया थोड़ा सा, इधर भी पकड़ लिया, इधर पकड़ ही लिया। कितना भी बचने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो हो जाता है। परंतु उसमें से कितने सारे हैं जिनको भर्ती करना पड़ा, जिनको दवाइयां चालू करनी पड़ी। हमारा होता भी है तो इतना नहीं होता है, केवल आवाज बदलता है फिर चेंज हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ये हमारा अनुभव है। तो ये भी एक शायद बचपन का कोई संस्कार है, कोई बीमारी जो दब गई थी वो निकल रही है। अभी संस्कार पर काम करना बाकी है, काम बहुत है, यात्रा जारी है।
ओम शांति भाई जी, मैं सेंटर में समर्पित हूँ, एज 41 है। हम 2 बहनें सेंटर में हैं और दोनों ही प्राणिक भट्टी कर रहे हैं। दिसंबर माह में एक टाइम भोजन लेते थे और 1 जनवरी से 21 जनवरी तक फलाहार लिया। उस समय थोड़ी वीकनेस आई थी, 2 किलो वेट कम हुआ था, पर इस लिक्विड यात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। शुरू में 7 दिन बाद 1 किलो वेट कम हुआ था, अब 12वें दिन फिर से 1 किलो वेट बढ़ गया है। और योग में जो अनुभव हमें कभी कभी होता था, वह इस यात्रा पर चलते हर रोज हो रहा है। ऐसा अनुभव होता है जैसे कि मस्तक में बड़ा बल्ब जल रहा है और उसकी लाइट चारों ओर फैल रही है। तो ऐसी यात्रा कराने के लिए भाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
और इस लिक्विड डाइट का किसी से भी शत्रुता नहीं, ना रॉ फूड वालों से, ना फ्रूट वालों से, ना वेजिटेरियन से, ना कुक्ड वालों से, सबको एक्सेप्ट करता है। ना साइंस से, क्योंकि साइंस के लिए हम कैलोरी की बात कर रहे, वजन की बात कर रहे, एनर्जी की बात कर रहे, सब अध्यात्म में भी बात कर रहे, इसलिए इस यात्रा का किसी से भी विरोध नहीं। सब लोग इसमें आ सकते, यहाँ तक कि नॉन वेज वाले भी, यहाँ तक कि दारू पीने वाले भी। तो जो भी है, तो इस यात्रा में ये एक फायदा है। और बाकी सब करने में वजन घटता है इसमें, क्योंकि हम कैलोरीज अच्छी रख रहे हैं। और हमने कहा जितनी ज्यादा रहे उतनी अच्छा, वजन घटना ही नहीं चाहिए, बढ़ गया तो बहुत अच्छा, थोड़ा बढ़ाओ, लिक्विड्स पे ही वजन बढ़ा के दिखाओ। और ये सेंटर पर रहकर कर रहे, कितनी बड़ी बात है।
ओम शांति भाई जी, मैं डेवन से भट्टी में हूँ। भट्टी अच्छी चल रही है। ये भट्टी में योग में अनुभूतियों को बढ़ाना चाहती थी, इसलिए कर रही हूँ। भट्टी के दौरान भाई जी एक दिन गाड़ी लेके बाहर गई तो ट्रैफिक में दो इंसिडेंट ऐसे आए कि मेरी गलती ना होते हुए भी मुझे गंदे अपशब्द बोले उन्होंने। तो तब तो मैं एकदम साक्षी भाव में थी, कुछ भी अंदर हलचल नहीं हुई। तो लगा कि प्राणी की यात्रा से साक्षी भाव की स्थिति आती है, ऐसा आपने कहा था तो वही है। लेकिन कल रात कुछ ऐसा पेपर आया, एक रिलेटिव ने नागपुर में जो रहते हैं कुछ घरेलू मैटर में गलत फहमी के कारण फोन पे इतनी अभद्र गालियां दी, तो इस वजह से मेरी स्थिति बिल्कुल डाउन हो गई। इसको मैं संभाल ही नहीं पा रही हूँ। प्राणी की यात्रा में तो मैं योग की स्थिति जो इतने दिन से हाई पे थी ये सब डिस्ट्रॉय हो गई। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, बर्दाश्त ही नहीं हो रही है बात, क्योंकि वो बहुत ही नजदीकी रिलेटिव है। लौकिक वालों को बताऊंगी तो वो तो टिट फॉर टैट ही बताएंगे। तो आप प्लीज मुझे गाइड करें, मेरी स्थिति बिल्कुल डाउन हो गई है। थैंक यू।
एकांत प्रकृति का आधार, हो सके तो चेंज प्लेस, कहीं चले जाओ एक दो दिन के लिए, जहां एकांत में बैठकर चिंतन करो, मनन करो। एंड नो रिएक्शन, नो डिस्कशन, नो रिएक्शन, नो आर्गुमेंट, नो डिबेट। जो हो गया वो हो गया, वही फुल स्टॉप कर दो उसको, और बाबा से अपना कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग करो। बस इसी में भलाई है, क्योंकि हम जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने आप को। जब सामने का व्यक्ति एग्रेसिव है तो चुप रहने में ही भलाई है, चुप रहो। दूसरों को यह समझने दो आप मूर्ख हो या आपकी गलती है, तो चुप रहना ही सबसे बेस्ट। माफ कर दो, छोड़ दो, कुछ भी मत करो।
ओम शांति भाई जी, मेरा ये प्रश्न जरूर लीजिए। भाई जी मेरा उम्र है 10 साल, मेरा हाइट है 4 फुट 4 इंच। मैं लिक्विड लेता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ तो लिक्विड कैसे लूं, स्कूल ले जाऊं लिक्विड? बताइए भाई जी, मैं फल खा सकता हूँ?
फल भी चलेगा तुम्हारे लिए। 10 साल का है, उमंग उत्साह बहुत है, और इस उम्र में ये पता चल गया, ये बहुत बड़ी बात है। एक दूसरा, स्मूदी बना सकते हैं, मम्मी को बोलो स्मूदी बना के दे, सूप बना के दे, ये दो चीजें तो बहुत है। थर्मास में लेके जाए, मम्मी के बारे में कुछ बताया नहीं। नेक्स्ट।
क्रांति भाई जी, एज 45, वेट 45, मैं पिछले 1.5 साल से NDS कर रही थी, लेकिन कभी कभी रात को पकाया हुआ भी ले रही थी, और 21 दिन की ये भट्टी मैंने लिक्विड डाइट की ज्वाइन की है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेट मेरा NDS स्टार्ट करने से पहले 55 था, फिर 45 हो गया था, अभी ये लिक्विड पर हूँ, लेकिन फिर भी वेट मेंटेन है, क्योंकि कैलरी मैंने बढ़ा दी है, 1500 से 2000 ले रही हूँ। और जैसे आपने बोला था कि वेट गेन करना है तो जिम ज्वाइन करो, तो आज मैंने जिम ज्वाइन किया है, लेकिन आज बहुत भूख ज़्यादा लग रही थी, 2800 तो कैलरी अभी तक की हो गई है, अभी रात को भी लेना पड़ेगा। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, तो थैंक यू, आपने सजेस्ट किया और जिम ज्वाइन करने से बहुत खुशी महसूस हुई। थैंक यू भाई जी, ओम शांति।
जिम ज्वाइन करने का और एक फायदा है, 1 घंटा अगर जिम जाते हो तो 1 घंटा कोई क्लास सुनो, 2 काम एक साथ होने चाहिए, खाली एक्सरसाइज नहीं करना है, कुछ तो क्लास भी सुनते रहो, बाकी टाइम तो है ही नहीं क्लास सुनने के लिए।
ओम शांति भाई जी, मैं रेशमी मुंबई से, मैंने ये यात्रा 17 से शुरू किया, और ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट्स हुए जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और एक प्रश्न भी था। पहले तो इस लिक्विड की यात्रा में स्विच ओवर करने में मुझे थोड़ा भी डिफ़िकल्टी की महसूसता भी नहीं हुई, क्योंकि पहले से मेरी सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड बेस था। वन टाइम तो जैसे आपने बताया था, बस कुक फूड को ही सूप में बदलना था, तो बड़े आराम से हो गया। और मुझे 2013-14 में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हुआ, हालांकि मैं योगासन और स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करके उसको कोप अप करती हूँ, क्योंकि मुझे सायटिका का बहुत पेन रहता है बिकॉज ऑफ दैट नर्व जो आई डोंट नो व्हाट डज इट कॉल, तो जो भी है इसके लिए मुझे हमेशा जैसे मैं सुबह उठती थी जैसे मेरा लोअर बैक जैम रहता था और लास्ट 3 महीने से ये समस्या बढ़ा भी था, लेकिन जैसे मैंने ये शुरू किया आई थिंक 19th सुबह में उठी तो 85% ऑफ माई पेन हैड गॉन और इसके कारण मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती थी। हालांकि जब मैं पांडव भवन गई थी आई फोर्सफुली वॉज मेकिंग माई सेल्फ सिट ऑन द फ्लोर, बट जैसे मैं वापस आई वो वापस आ गया था पेन, बट 85% अभी मेरा पेन गॉन है। पूरा दिन भी उसकी याद भी नहीं आती थी। मेरा सेडेंट्री जॉब तो है ही क्योंकि मैं आईटी में हूँ, तो काफ़ी घंटा मुझे बैठ के काम करना होता है, कभी कभी एट अ स्ट्रेच 4-5 आवर्स में भी आई एम नॉट बीइंग एबल टू गेट अप फ्रॉम माई सीट। तो दैट इज अ वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव सीन इन माई बॉडी। एंड सेकेंड थिंग, मुझे गम ब्लीडिंग है होता है सुबह जैसे मैं ब्रश करती हूँ, तो वो भी 19 से इनविजिबल है, नहीं है। और स्लिप साइकिल मेरी पहले से 4.5 घंटे की थी जो अभी 2.5 घंटा हो गया है। मतलब मैं 10 बजे सोती हूँ तो मैं 12:30 बजे उठ जाती हूँ। मेरा पहले से 4.5 घंटे की स्लिप थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा फोर्स
बहुत लंबा है। बस एक ही बात कहनी है कि हमारे शरीर में जो जड़ता है वो सॉलिड फूड की वजह से। जैसे ही आपको सारे जॉइंट पेन से अगर फ्री होना है तो उसका एक ठोस उपाय है, कंप्लीट लिक्विड पर शिफ्ट हो जाओ, धीरे 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 100% लिक्विड्स। जैसे जैसे लिक्विड्स पर जाओगे जो हाथ नहीं मुड़ता था वो हिलने लगेगा, जो जॉइंट्स सारे ढीले एकदम फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी शरीर में बिना योगासन किए, ताकत ज्यादा आ जाएगी। एक लास्ट ले लो कोई माइक। किसको झटका लगता है?
सुनाने वाले के थोड़ा रहेगा।
वे प्रोटीन लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। परंतु वे प्रोटीन्स जो भी है जिम में जो भी बताया जाता है, कई सारे जिम ट्रेनर्स उसके खिलाफ है। आप अगर वे प्रोटीन की हिस्ट्री देखो या वे प्रोटीन जिस तरह से बनता है उसमें बहुत सारी मिलावट होती है और इतने महंगे होते हैं। वे प्रोटीन से तो घर पे बनाओ, होममेड प्रोटीन्स कितने सस्ते बनते हैं, अंकुरित मूंग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोटीन वाली है। सत्तू है सबसे बेस्ट, तो ये
सत्तू तो सबसे बढ़िया है।
वे प्रोटीन की कीमत 2,000-3,000 का बॉक्स आता है, बहुत महंगे आते हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो लिया तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें थोड़ा सा बॉडी फूलती है। जिनको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेना है उनके लिए ठीक है, आपको अगर जाना है कॉम्पिटिशन में
ठीक है भैया, जैसे आप कहते हो इस भट्टी से आउट, एक झटका लगता है, क्या करें? तो थोड़ा धीरे से बोलने का
धीरे बोलूंगा अगली बार।
लास्ट प्रश्न है भी।
एज 31 कुमार, वेट पिछले सोमवार 57.9 था और पूरे हफ्ते की मूवमेंट के बाद संडे 58, आज की कैलोरीज 1940, कल 1500 और जिम इस हफ्ते ही शुरू किया से लास्ट टाइम आपने बोला था, और 3 से 4 दिन एक्सरसाइजेस और कल काफ़ी एक्सटेंसिव हार्ड क्रिकेट खेला, नेट्स में बॉलिंग एंड बैटिंग काफ़ी हार्ड था और बहुत सालों के बाद। लेकिन जो बात शेयर करनी है वो मन से संबंधित, कि जो कभी ना जैसे ऑपोजिट जेंडर के पास आसपास से जैसे हम गुजरते हैं, जैसे हम पास में होते हैं, तो जैसे अंदर एक वो जो हम जिसको बोले विकारी चित्र से बनते हैं, कुछ ऐसी भावना सी इमर्ज होती है। और इसको ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुआ है, आई थिंक पिछले एक साल से आई एम ऑब्जर्विंग दिस और काफ़ी इसका पता चल रहा है कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। और ये लेकिन अभी मोर अवेयरनेस हो गई इसके बारे में काफी ज्यादा कि जस्ट समथिंग गोज आउट ऑफ ट्रैक और इसे पता चलता है बीपी होना शुरू होता है ना कि कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा हो ऊपर नीचे अंदर. तो दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग दीज डेज मन से संबंधित जो है. और इसके बारे में आप क्या सोल्यूशन बताएंगे इसको जट से खत्म करने के लिए के रहे ही ना.
काम विकार का सारा खेल मन का खेल है. शरीर केवल एक साधन है बस. ये सारा खेल मन में हो रहा है. सारी वासनाएं मन में उमड़ रही है और जन्म जन्म से आत्मा ने विकारों को भोगा है तो वो सब कुछ उसमें है. यहाँ तक कि जन्म भी भ्रष्टाचार से ही हुआ है सबका. इसलिए वो तो बहुत इनबिल्ट है. इसलिए काम केवल ये दो ही चीजों पर है, एक सॉलिड फूड एंड सेक्स. ये दो ही पुरुषार्थ है, इन दोनों से मुक्त होना. और जैसे जैसे सॉलिड फूड से मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे ये देखेंगे ये वासनाएं भी अपने आप कम होती जाएगी. और उसके लिए भी बताया कुमारों के लिए तीन चीजों का त्याग, एक दो तीन, एकांत. एकांत अर्थात अकेले में रहना, थोड़ा संगठन में रहो, ग्रुप्स के साथ रहो. अगर प्राणिक यात्रा पर है तो प्राणिक फ्रेंड्स के साथ रहो. दूसरा है अंधकार. तीसरा है अति परिचय, फैमिलैरिटी. ये सब चीजें अवॉइड करनी है. और उस दिन जो ब्रह्मचर्य की क्लास में नौ प्रकार की बाढ़ें बताई वो सारी चीजें काम भोजन पर करो, अपने आप ये सारा काम हो जाएगा. इस पर काम करना ही नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे होगा ये. और ये जो कुछ होता है करंट अनुभव होना, क्योंकि उस दिन भी बताया था तीन मार्ग है. पहला भाव को बदलो. यदि हमारी बहन खड़ी है, भाई खड़ा है तो हमारे अंदर कोई भाव ऐसे उत्पन्न नहीं होते. कोई दूसरा खड़ा है तो उत्पन्न होते, क्योंकि यहाँ क्या है, ये मेरी बहन है या मेरा भाई है, इतना गहरा है वो. तो वो भाव पर चेंज कम करो. दूसरा है शरीर. उस व्यक्ति के संपूर्ण शरीर को आर पार देखो, चमड़ी निकाल कर क्या है उसमें, कौन सा आकर्षण है, किस चीज से भरा पड़ा है ये शरीर, उस पर काम करो. और तीसरा बाबा ने जो मुरली में कहा अभी नीचे शांतिवन में कहा, देखो मस्तक पर देखो, बाकी चीजें देखो ही नहीं. और दूसरा अपना थोड़ा डिजिटल जो भी है वो सब कम करो. ये यूट्यूब और ये सब माया है. ज्ञान योग को बढ़ाओ, चिंतन को बढ़ाओ, अध्यात्म को बढ़ाओ, एकांत को. एकांत अर्थात वैसा वाला नहीं जो हम कह रहे, खतरनाक एकांत जो होता है वो ये वाला होता है जिसमें अकेले बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे और व्यर्थ चल रहा है. फिर अपने आप बुद्धि जाएगी यूट्यूब और ये सब की तरफ, फिर विकारी ख्याल आएंगे. प्रकृति का एकांत अलग एकांत है, वो ले सकते हैं. और शुरुआत में तो एकांत लो ही नहीं, अगर ऐसी स्थिति है ग्रुप के साथ रहो तो अच्छा है. ओम शांति. और ब्रह्मचर्य संबंधित जितनी क्लासेस है वो सुनो, ब्रह्मचर्य संबंधित जितना लिटरेचर है सुनो. लक्ष्य रखो एवरी डे एक पेज ब्रह्मचर्य पर पढ़ना ही है. एवरी डे एक पेज ब्रह्मचर्य पर पढ़ना है, कोई भी लिटरेचर हो, संसार का फिर हो. और टेलीग्राम में एक बहुत बड़ा ग्रुप है ब्रह्मचर्य, उसको ज्वाइन करो. कुमारों का एक ग्रुप है बहुत बड़ा, विश्व ब्रह्मा कुमारी इसका नहीं है पर बहुत बड़ा ग्रुप है ब्रह्मचर्य 111 ऐसा कुछ नाम है उसका. उसमें हर संडे वो लोग मिलते हैं और शेयर करते हैं. पर बीकेएस के सॉन्ग्स भी है उसमें बहुत सारे. ओम शांति.
तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी. संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव विजय भव गगन कहे विजय भव भटकी है रोशनी है छटपटा रही रोशनी गगन कहे विजय भव घायल है तेरा जल तू नदी है राह बदल पानी बुलबुला रहा है कल 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 तू निकल माटी ने तेरी आज पुकारा धरती ये पूछे बारंबार लुट रहा ये चमन तेरा वतन आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव विजय भव विजय भव